ओम शांति। तो आप सबको यहां पे आनंद आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ये पहला कोर्स है जो आपने अपनी जिंदगी में किया है, जहां 4 बजे उठ के आना पड़ता है। 5 बजे तक तो कमांडो कोर्स में उठाते हैं, पर 4 बजे भी उठा सकते हैं। तो ये भी एक स्पिरिचुअल कमांडो कोर्स है ना। यहां पे पूरे दिन भी बिजी रखा जा रहा है और रात 10 बजे तक आप बिजी हैं, और सारी बातें स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म से जुड़ी हैं। तो इसकी जरूरत है फौज को और फौजी लोगों को। पर चूंकि इस तरफ अब धीरे धीरे ध्यान जा रहा है हमारे सीनियर्स का, इसलिए ये अब इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो मेरा नाम है कर्नल बीसी सती। मैं रिटायर्ड हूं। मैंने इंडियन आर्मी में 33 ईयर्स की सेवा दी। 1989 में मैं आर्मी में कमीशन हुआ था, शॉर्ट सर्विस कमीशन गढ़वाल राइफल्स में। और उसके बाद मैंने को आर्मी ने परमानेंट कमीशन दिया। और उसके बाद जब मेरे को अराउंड 29 इयर्स सर्विस मेरी हुई थी, तो मेरा रिटायरमेंट हुआ और फिर 4 साल का मुझे री एम्प्लॉयमेंट दिया गया। और उसके बाद नवंबर 22 में मैं फाइनली रिटायर हो गया। और मैं 18 साल की आयु से इस ज्ञान से जुड़ा हूं, मतलब 1983 से। तब मैं बीएससी कर रहा था लखनऊ में, और मुझे राजयोग के बारे में पता चला, तो मैं कन्विंस हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्लियर हूं कि ये ज्ञान क्या है, और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इस पे चलूंगा। और तब मैं लखनऊ में रहता था, वहां पढ़ रहा था, हॉस्टल में था। तो लखनऊ को मैं कहता हूं योर लक इज नाउ, लक नाउ। और वहीं से मैंने कमीशन के लिए भी क्लियर किया, एसएसबी और यूपीएससी, और वहीं से भगवान भी जीवन में आए। तो पहले भगवान का आना हुआ और फिर उसके बाद सफलताएं मिलने लगी और राज्यों का अभ्यास शुरू हुआ जीवन में। तो नॉर्मली दुनिया में देखा जाता है कि लोग ऐसे मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पे, रिटायरमेंट के बाद चलते हैं। अभी भी आप लोग में से कई लोग जो यहां बैठे हैं सोच रहे होंगे कि ये अच्छी जगह है, अच्छा ज्ञान है, इस पे हम चलेंगे, पर रिटायरमेंट के बाद चलेंगे, अभी हमारी एज नहीं हुई है। कोई सोचेगा कि अभी टाइम नहीं आया है, बट मैं आपको इशारा करना चाहता हूं कि समय जा रहा है, वक्त जा रहा है, शीघ्र अति शीघ्र अगर आप इस ज्ञान को समझ के यथाशक्ति फॉलो करोगे, तो जीवन में खुशी और शांति और बैलेंस तीनों बढ़ती जाएगी और जीवन का आनंद आने लगेगा। तो आज का विषय है कि हम खुश कैसे रहें, जीवन में खुश रहने की कला क्या है, और विशेषकर जब हम फौजी जीवन में। तो मैं पहले इस ज्ञान में आया, तो मेरी उम्र 18 साल की थी और 1983 था वो साल, जुलाई का महीना। और फिर मैं 6 साल जब मुझे इस ज्ञान में हो गए, तो मेरे को इंडियन आर्मी में आने का मौका मिला। तो आप समझ सकते हो कि 6 साल में मैं कितना इस ज्ञान को समझ चुका था और कितनी इसकी धारणा मेरे लाइफ में आ गई थी। और आज आपने 3 दिन में देखा है, जो आप यहां रह रहे हो, तो आपको यहां का माहौल दिखा है कितना दिव्य है, डिवाइन है, आध्यात्मिक है। फौज का एक माहौल है, हम सब जानते हैं हमारे बैरिक्स में, हमारे पलटन में क्या माहौल होता है, और एक माहौल आप यहां भी देख रहे हो। तो गाली गलौज हो रही है यहां पे, कोई चिल्ला रहा है एक दूसरे पे, पर सब काम प्यार से और शांति से, और टाइम से हो रहा है कि बिल्कुल लेट है, सब बिफोर टाइम। तो ये सब क्या है, ये भी एक फौज है, रूहानी फौज है, जहां पे एक रूहानी ड्रिल और डिसिप्लिन के आधार पे, जहां परमात्मा हमारा सुप्रीम कमांडर है और वो हम आत्माओं को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, ड्रिल करा रहा है, और हम उसको समझते हुए उस पे चल रहे हैं। इसलिए आपको ये अनुशासन दिख रहा है यहां पे। फौज में भी ऐसा ही अनुशासन चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ज्ञान है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, सिर्फ हमें समझने की देरी है। अगर हम इसको समझ गए तो जीवन में खुशी खुशी है। तो मैं जैसे बता रहा था कि मैं इस ज्ञान में 83 में आया और 89 में मैं आर्मी में आया, तो 6 साल जो मुझे हो गए थे ज्ञान में, तो मैं तो बड़ा डिवाइन हो गया था। ओम शांति, है ना, सबसे मिलता था तो ओम शांति बोलता था। मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन था, है ना, प्योर वेजिटेरियन फूड खाता था, विदाउट ऑनियन गार्लिक। ये जो भोजन आपको यहां मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए, इसमें लहसुन और प्याज नहीं होता है, ये प्योर सात्विक भोजन है। किसी एक कैंडिडेट ने, डेलीगेट ने, जो अभी हमारे बीच में बैठे हैं, ये लिखा था अपने फोरम में कि मैं कृतज्ञ रहूंगा अगर आप मुझे बिना लहसुन प्याज का भोजन खिलाएंगे। और यहां कौन सा भोजन बन रहा है? भोजन ही वही बन रहा है। और वही नहीं, जो भोजन बन रहा है वो भोग लगता है परमात्मा शिव को, और भोग लगने के बाद आप भोजन नहीं खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो? इसलिए देखो आपके विचारों में 3 दिन में कोई अंतर आया? अरे भाई, अगर आप अभी घर को फोन करोगे या घर से फोन आएगा ना, तो आपकी वाइफ कहेगी कि आप कौन बोल रहे हो। और वाइफ अगर फोन करके, तो हस्बैंड कहेगी आप बोल कौन रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज, आपका टोन सब चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको 3 दिन में भोजन का जो असर है ना, वो बहुत जीवन में होता है, सीधे विचारों पे होता है, फिर जीवन में होता है। तो मैं जब फौज में आया 89 में, तो ट्रेनिंग में पहले OTA मद्रास जाना पड़ा, तो 3 दिन बाद, ट्रेनिंग के बाद, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं फौज छोड़ देता हूं। क्यों लिया मैंने निर्णय? क्योंकि कितना अच्छा माहौल है हमारे फौज में, गालियों की इतनी बरसात मेरे पे हुई कि जो गाली मैं कभी किसी को देता ही नहीं था, उन गालियों से मेरा स्वागत हुआ था। बट मैं आपको बताता हूं, हमारे फौज में भी ना हीरे बैठे हैं, रतन है, आप में भी कई आत्माएं ऐसी हैं जो बहुत गोल्ड है ना, डायमंड है, सब अच्छे हैं बट कुछ डायमंड भी होते हैं। तो ऐसे उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी कुछ डायमंड बैठे थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मेरी परेशानी पहचान ली, उन्होंने कहा कि देखो 2-4 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, मैंने अपने को, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान तो था ही, सहन शक्ति तो थी, सिर्फ माहौल मेरे अंदर ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने उस ट्रेनिंग को पूरा किया, मैं फिजिकली बहुत फिट था। मैं रानीखेत का रहने वाला हूं, जो जिला अल्मोड़ा में होता है। मेरे फादर इंडियन नेवी में थे, वो सूबेदार मेजर थे, और वो सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो गई थी 79 में, हम कोचीन में थे। उसके बाद हमारा घर आना हुआ और हमने फिर आगे की पढ़ाई रानीखेत से की, और फिर मैंने हॉस्टल में रहते हुए BSc MSc किया। मैं MSc इन बॉटनी हूं, और 86 में मैंने MSc किया, और 87 में फिर इसमें सिलेक्ट हुआ फौज में। तो जब मैं ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो ट्रेनिंग, चूंकि मैं हिल का था तो ट्रेनिंग में तो मैं फिट था, तो ट्रेनिंग तो अच्छे ढंग से पूरी की। और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फिर मेरे को 9 गढ़वाल राइफल्स इन्फेंट्री में कमीशन मिला, और मैं हूं तो कुमाऊं का, पर मुझे गढ़वाल रेजिमेंट मिली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं अपने ही लोगों के बीच में जा रहा हूं। और जैसे ही मैं पलटन में पहुंचा, तो क्या होता है पलटन में? स्वागत होता है। कैसे स्वागत होता है? सर, आपको ड्रिंक लेनी ही पड़ेगी, है ना, ट्रे में ड्रिंक आती है और आपको लेना है, तो अब बताइए। और वो ऐसे नहीं पिलाते, जिद से पिलाते। तो फिर मेरे को भी जिद करनी पड़ी, तो 2-4 दिन तो हमारी जिद चलती रही। फिर मेरे जो कमान अधिकारी थे, बहुत सज्जन थे, बहुत बैलेंस्ड थे, तो उनके पास फिर मैं ऑफिस में गया और मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूं, मेरी जीवन शैली क्या है, तो वो समझ गए मेरे को। उन्होंने तुरंत एडजुटेंट को आदेश दिया कि इस ऑफिसर को कोई भी ड्रिंक के लिए फोर्स नहीं करेगा। कई लोग मुझे कहते हैं, सर हम क्या करें, लोग कहते हैं तो पीना पड़ता है, क्या बोले आपको, है ना, बोलते हैं, प्रेशर होता है ना, इतना जोर देते हैं तो पी लेते हैं हम। ऐसा नहीं है, अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो दूसरा पिला सकता है? नहीं पिला सकता। इसलिए आप में से कुछ अगर यहां भी लगता है ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशारा मिला है मेरे स्टाफ से कि थोड़ी महक आ रही है ना, महक आ रही है, क्योंकि महक तो बहलती है, तो आज आप निर्णय कर सकते हो कि हम ये छोड़ सकते हैं। देखो मेरी एज 58 ईयर्स है अभी। कई लोग सोचेंगे साहब ने अपने बालों को डाई करके लगाया होगा, तो ये मेरे बाल नेचुरल है ना, क्योंकि ये योग का कमाल है कि हम योग करते हैं तो योग से आप फिट रहते हो, फिजिकली भी और मेंटली भी, है ना। तो मैंने इस 58 साल में कोई भी व्यसन नहीं किया है, ना शराब, ना गुटखा, ना पान, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना नॉनवेज, ना एग्स, कुछ नहीं लेता हूं। और जब से इस ज्ञान में आया तब तो बिल्कुल ही सब छोड़ दिया है ना। और पिछले करीब आप मान लिए 30 ईयर से इंडियन आर्मी में मैं भी था, तो मैंने सात्विक भोजन स्टार्ट कर दिया। तो मैं जो भी कोई मेस पार्टी में जाता हूं तो मैं भोजन नहीं लेता हूं, अगर भोजन लूंगा तो वो भोजन बिना लहसुन प्याज का होगा तब लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। मैं फ्रूट्स लूंगा, मैं दही लूंगा, मैं राइस लूंगा, मैं कर्ड लूंगा, है ना, पर मैं भोजन जो बना है सबके लिए वो नहीं लूंगा। तो धीरे धीरे सब जब समझ गए मेरे सीनियर्स तो वो वही भोजन मेरे लिए बनाएंगे जो मैं स्वीकार करता था, अदरवाइज वो कहते थे कि सर आप के लिए हमने फ्रूट्स रखा है। तो ये हमारे ऊपर है। पर एक चीज मैं बताता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि जो भोजन है उसका हमारे विचारों पे असर है। आपने सबने सुना होगा जैसा अन्न वैसा मन, मन मतलब विचार। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए, और अगर मन प्रसन्न है तो जीवन प्रसन्न है। अब हम लोग का फौज में बहुत प्रचलन है नॉन वेज का। देखो मैं तो ऑफिसर कमांडिंग भी रहा, कमांडिंग ऑफिसर भी रहा, है ना, हमारे साथ स्टाफ ऑफिसर भी रहा हूं फॉर्मेशन में, तो नॉनवेज तो बनता ही है, बट उसका असर हमारे विचारों पे बहुत जबरदस्त होता है। मुझसे कोई पूछा था कि सर हम बहुत देर से समझे इस ज्ञान को, अगर हमें अभी उड़ना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा अपना भोजन शुद्ध कर दो, फूड को शुद्ध कर दो, आप रॉकेट की स्पीड से आगे जाएंगे। पर अगर आप सिर्फ अच्छा है अच्छा है अच्छा है करते रहेंगे और जो मर्जी खा रहे हो, जहां मर्जी हो, है ना, रह रहे हो, पी रहे हो, तो फिर इतना असर नहीं होगा, भले ज्ञान कितना भी हो। तो असर इसका होता है भोजन से, और भोजन शुद्ध है तो आपके विचार में पावर होती है। शुद्ध विचार मतलब पावरफुल थॉट्स। तो जब मैं अपने बटालियन में आया तो 5 साल मैंने पूरे किए, तो मुझे ऐसा लगने लगा जब मैं पहले 5 साल के लिए फौज में था, क्योंकि मैं शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, मेरा 5 साल का ही करार था, और मेरा मन में एक ही संकल्प था कि मैं 5 साल बाद छोड़ दूंगा इस फौज को। मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता फौज को कि फौज अच्छी नहीं है, फौज तो बहुत अच्छी है, आप सब फौजी हैं, है ना, हम सब फौजी हैं, हम सब ने देखा है हमारे अंदर, हमारे यहां वहां पे एक परिवार की भावना है, फैमिली की भावना है, एक दूसरे को इज्जत देना, सम्मान देना, बड़े छोटों का सम्मान देते हैं हम, लेडीज का कितना रेस्पेक्ट दिखाते हैं। तो मुझे तो फौज से बहुत प्यार है, पर चूंकि मेरी विचारधारा अध्यात्म से जुड़ी है तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने व्यक्तिगत निर्णय लिया था कि मैं फौज में नहीं रहूंगा, मैं 5 साल बाद छोड़ दूंगा इस फौज को और यहां आके इस मुख्यालय में आके सेवा दूंगा। पर जैसे ही मेरे 5 साल पूरे हो रहे थे तो मुझे एक फॉर्म दिया गया कि आपको रहना है या छोड़ना है या 5 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं आप। तो मैंने जैसे बताया पिताजी तो थे नहीं, 3 छोटी बहनें थी, एक बड़े भाई थे, तो माताजी का प्रेशर था कि भाई बहनों की शादी में आपको योगदान करना है। तो मेरे 5 साल में एक बहन की तो शादी हो गई थी, 2 रह गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सटेंशन लिया जाए, क्योंकि इनकी भी शादी करके फिर हम प्रॉपरली सरेंडर हो जाएंगे। तो मैंने एक्सटेंशन भर के फॉर्म जमा कर दिया, तो उसमें काउंटर साइन होना था कमान अधिकारी का। तो उनके पास जब फॉर्म गया तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, बोला कि आपने एक्सटेंशन के लिए भरा है तो आपने परमानेंट कमीशन क्यों नहीं भरा। तो मैंने कहा कि सर मुझे फौज बहुत अच्छी लगती है, आप सब मुझे बहुत प्यार देते हो, मुझे बहुत मैं बहुत खुश हूं, बट मैं एक स्पिरिचुअल सोल हूं और मुझे स्पिरिचुअल लाइफ जीने का ना बहुत शौक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी विचारधारा यहां पे ना मैच नहीं कर रही है, तो मैं वो लाइफ जीना चाहूंगा जो मुझे पसंद है। तो कुछ देर वो मुझे देखते रहे, फिर बहुत मुस्कुराए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो मेजर कैप्टन सती, तब मैं कैप्टन था, कि आप जैसे ऑफिसर्स बहुत कम है इंडियन आर्मी में, जो ऐसे इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने डिवाइन हैं, इतना उनका ना इतने फिट भी आप इतने फिट हो, और येट आपके अंदर कोई ना ऐब नहीं है। जानते हो जब पार्टी होती है मेस में तो मैं आपको वॉच करता हूं, तो क्या देखता हूं कि हम सब अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, 12 बज चुके हैं, हम सब बहुत मस्ती में यहां रखे, और आप एक कोने में नींबू पानी का ग्लास लेके मुस्कुराते हुए खड़े हो और एकदम अलर्ट हो, तब मैं सोचता हूं कि अगर कोई बात होगी, कोई बात आएगी तो कौन टैकल करेगा, क्योंकि सब तो इंजॉय कर रहे हैं। तब मुझे विश्वास होता था कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम उसका बिल्कुल अपने फिट हालत में हो। तो जानते हो मेरे मन में तुम्हारे लिए एक ही विचार है कि तुम्हें परमानेंट कमीशन लेना चाहिए। तो मैं तुमको तुम्हारा ये फॉरम अस्वीकार करता हूं और रिकमेंड करता हूं और ऑर्डर भी देता हूं कि तुम सिर्फ परमानेंट कमीशन भरोगे। तो मैंने बोला जी सर मेरे को एक दिन का टाइम दीजिए। तो मैं फिर शाम को वहां पे, हैदराबाद की बात है, तो अपनी बहनों से मिला जो वहां का ब्रांच था। मैंने उनसे निर्णय लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप 5 साल से फौज में हैं, आपको फौज का पूरा रवैया पता चल चुका है, अब आपको फौज में ही रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपसे कोई सेवा हो सकती है, क्योंकि आप फौज को जानते हो और अंदर के माहौल को जानते हो। तो मुझे लगा कि शायद अब मैं कन्विंस हुआ हूं कि मुझे रहना चाहिए। फिर अगले दिन मैंने दोबारा फॉर्म भरा और मुझे परमानेंट कमीशन मिल गया। जैसे परमानेंट कमीशन मिला तो हमारी पलटन हैदराबाद से कश्मीर आ रही थी, 95 की ये बात है। मैं कैप्टन था तो मुझे तुरंत उन्होंने मेजर का रैंक दिया, बोला कि भाई आपका टाइम आ गया है, आपको एक्टिंग रैंक देंगे हम। तो मेजर के रूप में प्रमोट किया और हम कश्मीर पहुंचे। तो कश्मीर पहुंचते ही हमको जो टास्क दिया गया, आप सब जानते हो, वो था आतंकवादियों को पकड़ो। अभी एक तरफ मैं क्या बोल रहा हूं, ओम, और दूसरा क्या टास्क दिया है, आतंकवादी पकड़ो। तो पलटन में 7 कंपनियां थी, है ना, अल्फा, ब्रेगो, चार्ली, डेल्टा, इको और सपोर्ट कंपनी। चारों के कंपनी कमांडर, सभी में कंपनी कमांडर, मैं सबसे यंग, बाकी सब सीनियर। तो कमान अधिकारी ने 1 महीने तो हमें ट्रेनिंग कराई, पहले बोला कि पहले ट्रेनिंग करो कैसे होता है यहाँ पे काम। फिर 1 महीने के बाद बोला कि अब हो गया ट्रेनिंग पूरा, अब आप लोग ऑपरेशंस करिए और मुझे रिपोर्ट चाहिए और रिजल्ट चाहिए ग्राउंड पे। तो मेरा एक आदत है कि मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रिंसिपल्स, है ना, कुछ फॉर्मूला बताता हूँ सक्सेस के और खुश रहने के। तो सबसे पहला फॉर्मूला है खुश रहने का और सफल बनने का, वो है कि हमेशा अपने को इंस्ट्रूमेंट समझो। क्या समझो, इंस्ट्रूमेंट, निमित्त, कि मैं माध्यम हूं, कराने वाला कौन है, परमात्मा। तो मैंने ऐसे ही परमात्मा के सामने बैठ के अपना, मैं तो मेडिटेशन करता था, मेरी दिनचर्या मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं रोज 4 बजे उठता हूं, 1.5 घंटा योग करता हूं, मेडिटेशन जो आप लोग कर रहे हो आजकल। उसके बाद मैं अपना पीटी गेम्स तो करता ही हूं, फिर उसके बाद कुछ लिटरेचर पढ़ता हूं अध्यात्म का, 1.5 घंटा सुनता भी हूं, गीत भी सुनता हूं, सारे पॉजिटिव ना मोटिवेशनल सॉन्ग्स, इंस्पायरिंग सॉन्ग्स। फिर मेरा दिन, आपको मैंने बताया भोजन शैली कैसी रहती है, एकदम सात्विक भोजन। मैंने पिछले 10 साल से आपको बताना चाहता हूं कॉफी और चाय नहीं लेता हूं मैं। तो पहले मैं बहुत चाय का शौकीन था, फिर मुझे एक दिन संकल्प आया कि नहीं, चाय नहीं पीना चाहिए ज्यादा, बल्कि पीना ही नहीं चाहिए। तो उस दिन से फिर वो चाय बंद हो गई है। तो अभी सुबह उठ के सिर्फ गर्म पानी पीते हैं। तो ये सारी आदत दिनचर्या मेरी है और रात को मैं करीब 10:30-11 तक सो जाता हूं और 4 o'clock मैं उठ जाता हूं। तो ये मेरी दिनचर्या फौज में भी थी और मेडिटेशन करता था, तो मैं वहां पे भी मेडिटेशन करता था। तो उस मेडिटेशन में मैं परमात्मा से मेरी बातचीत होती थी, तो मैं कहता था कि हमें ये टास्क मिला है और हमें आतंकवादियों को पकड़ना है, तो आप मुझे गाइड करें, है ना। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि परमात्मा को अगर आप अपना टीचर बना लें तो वो आपको हर फील्ड में गाइड कर सकता है, हर फील्ड में। और विशेष मैं तो फौजी हूं, फौजी अफसर, सारे फौजी काम करने हैं, उसमें भी मैंने देखा कि कैसे भगवान आपको हेल्प करता है। तो मेरे को जो इलाका दिया था कश्मीर में, वो था, आप सब जानते हैं अगर कश्मीर को, बख्शी स्टेडियम नियर लाल चौक, है ना, वहां पे सीआरपीएफ भी तैनात है बख्शी स्टेडियम के नजदीक में। वहां पे हाफ चिनार है और अमर सिंह कॉलेज है, है ना, तो उसके बिल्कुल बगल से हमारा लाल चौक है। तो मुझे वो इलाका दिया गया और मैं वहां का कमांडर था। तो मेरी एक आदत थी कि जैसे ही हमको बोला ना ऑपरेशन करो, तो मैं रोज सुबह और शाम 2 पेट्रोलिंग करता था, और पेट्रोलिंग गाड़ी में नहीं करता था, पैदल अपनी टीम के साथ निकलो, निकलने से पहले पूरी टीम को ब्रीफ करो, चलने से पहले 2 मिनट मेडिटेशन। मेरी एक ड्रिल है, शुरू से थी और अभी तक चलती आई जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ, कि जब भी कोई काम करना है तो 2 मिनट क्या करना है, मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपकी वो जो कमियां है ना वो भरपूर हो जाती है, क्योंकि आप किसको सौंप रहे हैं वो काम, ईश्वर को, कि भाई ये काम करने जा रहे हैं अब आपकी याद में आपके साथ चल रहे हैं, तो वो पावर है ना, और वो एक ऊपर से छतरी, अदृश्य छतरी आपके ऊपर आ जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं बुलेट प्रूफ है ना, छत्र छाया। तो हम जाते थे, तो जब हम रोड पे निकलते थे कश्मीर के, तो जिन भी गली में हम जाते थे तो मैं अपने बच्चों को बताता था, अपने कमांडोज को, मेरा स्थान तीसरे लोकेशन में होता था, पहले 2 स्काउट फिर तीसरे पे मैं खड़ा रहता था। आपको पता है कॉम्बैट ड्रेस हम पहनते ही हैं, बुलेट प्रूफ पहना हुआ होता था, सर पे हेलमेट रहती थी मेरे, और हाथ में मेरा AK राइफल हमेशा तैयारी हालत में, मैगजीन चढ़ी हुई राउंड चैम्बर पे, और जब मैं देखता था इधर उधर तो लोग थोड़े से डर जाते थे कि ये कौन है, क्योंकि आपका जो पोस्चर है वही दुश्मन देखना चाहता है। अगर स्लिंग लगा के तो क्या करेगा वो आपको टारगेट बनाएगा, और अगर आप हथियार लेके और आपकी नजरें घूम रही हैं तो क्या सोचेगा कि ये रेडी है। अगर मैंने मौका, देखो मिलिटेंट तो घूम रहा है, वॉच कर रहा है आपको, बट वो एक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है ये बहुत अलर्ट है ना। तो हम ऐसे घूमते थे तो वो कुछ कर नहीं पाते थे, बट हम अपनी खबर लेते रहते थे, पर हम लोगों से भी मिलते थे, बड़े प्यार से भी मिलते थे, तो लोगों को दिखने लगा है ना, उनको लगा ये कौन ऑफिसर है जो है ना ऐसे घूमता है रोज, और ना लाल चौक में भी पैदल आता है और सबसे देखता है मिलता है ना, वो सोचते थे कि ये हमको ना घूर रहा है। पर मैं एक्चुअल में क्या कर रहा होता था बताइए, मैं वाइब्रेशंस दे रहा था, क्योंकि परमात्मा कहता है ना कि जब आप मुझे याद करते हो और फिर कहीं देख रहे हो तो आप नहीं देख रहे हो, आप आपके थ्रू कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं, तो वो वाइब्रेशंस जाके तो क्या होता है वो एरिया न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे जैमर लगा के कोई चीज को न्यूट्रलाइज कर देते ना, वैसे एरिया न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो क्या होगा आप सेफ रहोगे। तो मैं सारे जगह पे ऐसे न्यूट्रलाइज करता था, जहां दूर होता था डिस्टेंस वहां पे फिर मैं गाड़ी से भी जाता था। तो हमारे ऑपरेशन शुरू हुए, हम निकले, तो करीब हमको 1 हफ्ता हुआ था, 1 हफ्ता, तो 1 हफ्ता हुआ और मैंने अपने CEO को रिंग किया दिन में करीब 12 बजे, 1 बजे की बात है, कि सर आपको एक खुशखबरी सुनानी है। कहते क्या खुशखबरी है, कि मैंने एक मिलिटेंट पकड़ लिया है, ही इज पाकिस्तान ट्रेंड, उसे AK राइफल मिली है और 90 राउंड मिले हैं और वो मेरे कब्जे में है। तो CEO साहब को यकीन नहीं हुआ, कहते यार ये जोखिम कितनी, मजाक कर रहे मेरे साथ। मैं नहीं सर, अगर आप चाहें तो आप आके उससे मिल सकते हैं मिलिटेंट से। कहता है आई एम कमिंग, मैं तुम्हारे लिए इनाम लेके आ रहा हूं अगर ये सच बात है। तो आप कहोगे सर मिलिटेंट कैसे मिल गया 1 हफ्ते में, देखो मैंने किसको सौंपा था काम, मैंने तो ऊपर वाले को बोला था भाई मेरा काम करना है। तो मैं जब ये गलियों में घूम रहा था ना, तो एक मुखबिर जो बहुत परेशान था वो मुझे देख रहा था बार बार, ये कौन घूम रहा है। उसे लगा कि ये बंदा ठीक है ना, इससे मिलना चाहिए, तो मेरे कैंप में आया, उसने सेंट्री से बोला कि मुझे साहब से मिलाओ। तो कौन है तुम, उसने कि मैं इन्फॉर्मर हूं, मैं कुछ खबर दूंगा सर को। तो मेरे से मुझे बताया गया, मैंने कहा अच्छा भेजो, तो उसको भेजा गया अंदर। तो मैंने बोला हाँ बताइए भाई साहब कैसे हैं आप। कहते सर मुझे आपको एक खबर देनी है, मैं आपको देख रहा हूँ आप हमारे इलाके में घूमते रहते हो, तो आपको एक खबर देनी है। मतलब बताइए आप इस सिटी से इस रोड से गुजरते हैं ना। मैंने हाँ गुजरता हूँ। तो उसमें वो जो दुकान में जो बैठा हुआ है बंदा वो मिलिटेंट है। मैंने मिलिटेंट है वो? कहते हाँ मिलिटेंट है और वो पाकिस्तान ट्रेंड है। तो पर वो बहुत चलाक है सर, वो जैसे आप आते हो ना वो भाग जाता है पीछे से, उसका रास्ता है पीछे से भागने का, वो देखता रहता है बाहर, उसकी वाइफ भी वॉच करती रहती है। ओके तो सर वो CRPF वालों से नहीं डरता है। मैं क्यों नहीं डरता है? अरे सर CRPF की तो वहां आरोपी लगी रहती है दिन भर, उसको पहचानते ही नहीं है कि मिलिटेंट है, तो बैठा रहता है उनके सामने, उसको कोई डर नहीं है। मैंने अच्छा तो मतलब क्या आपको क्या परेशानी है? कहता है मेरे को भी ये परेशानी है कि ये मुझे बहुत तंग कर रहा है ये मिलिटेंट। मेरा गैस का गोदाम है, मेरे पास गैस के सिलेंडर्स हैं, ये हर महीने मेरे से एक सिलेंडर लेता है, पैसे नहीं देता है। और एक दो बार तो मैंने कुछ नहीं बोला, बट अभी मेरा लॉस हो रहा है तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और जब मैं इसे बोलता हूं पैसे दो तो ये मुझे मारता है और मुझे पिस्टल दिखाता है अपना, है ना, हथियार दिखाता है। तो इसके हथियार है? कहते हैं हाँ सर इसके हथियार है। ठीक है। तो मैंने बोला भाई हम तो इसको पहचान ही नहीं पाएंगे, तो तुमको साथ चलना पड़ेगा। कहते हाँ सर मैं चलूंगा ना आपके साथ। तो मैंने क्या सोचा, मैं मेडिटेशन में बैठ गया। मैंने बोली क्या करना चाहिए, एकदम एक विचार आया कि सीआरपीएफ ड्रेस में जाना चाहिए। किसमें जाना चाहिए? तो मैंने बगल में सीआरपीएफ की कंपनी थी, मैंने वहां से 8-10 ड्रेस मंगा लिए। मैंने अपने जवानों को सीआरपीएफ का ड्रेस पहना दिया। मैंने भाई इस ड्रेस को पहनो, अच्छा सीआरपीएफ खड़ी होती आप भी खड़े हो जाओगे, है ना। सब दिखा दिया उनको, सब ब्रीफिंग कर दी। तो जैसे उसने दुकान खोली तो सीआरपीएफ वाले तो खड़े ही थे, हमारे जवान भी उनके बीच में खड़े हो गए। उसने जो सीआरपीएफ वाले खड़े हो गए, उसके बाद ब्रीफिंग थी कि अंदर जाना है, उससे पूछना है कि भाई साबुन कितने में दोगे, टूथपेस्ट कितने में दोगे, है ना। फिर जब उसको बोला भाई ये लिखो हमारा ऑर्डर, तो ऑर्डर बनाएगा। फिर बोलना कि पेमेंट जो है ना वो आपको साहब से बाहर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट तो साहब ही करेंगे। तो कहते साहब कहाँ है, बोलो साहब जीप में बैठे हैं, उनको बता दो। फिर तो उसने ठीक है। तो जैसे वो बाहर आए है ना, जीप दुकान से पांव रखा तो हमारे जवानों ने उसको उठा लिया। उठाया तो मेरी जीप आगे आई, उसको जीप अंदर डाला और हम उसको लेके कैंप में आ गए। तब तो उसकी वाइफ ने देख लिया कि ये उठा के ले गए उसको। उनको तो विश्वास ही नहीं था कि सीआरपीएफ वाले तो कभी नहीं ऐसा करते थे, पर हम तो सीआरपीएफ के वेश में पहुंचे हुए थे। जैसे कैंप में लाए तो आप सब जानते हो कश्मीरी जो मिलिटेंट होता है वो कभी सच नहीं बोलेगा, सच बोलना ही नहीं है उनको। तो फिर सख्ताई के साथ उसने सच बोला कि जी सर मैं मिलिटेंट हूं और मैं पाकिस्तान ट्रेंड हूं। हथियार है? कहते हाँ सब। कहा है? कहते सब मैंने छिपाया, पर आप अगर अभी नहीं चलोगे तो जहां छिपाया वहां से उठा लिया जाएगा। तो चलो, कहा है? मेरी ताई जी के घर में। तो ताई जी के पास पहुंचे तो ताई जी दुकान से करीब 200 मीटर दूर पे थी। तो ताई जी थी करीब 5.5 फीट, 80-90 केजी, बहुत एकदम स्ट्रांग लेडी। तो हमने उससे मिले, हमने बोला भी इनका हथियार दे दो। कहते कौन सा हथियार? जो इनका है। कहते कोई हथियार नहीं मेरे पास, ये वो है। हमसे बहस करने लगी। तो मैंने उसको बोला, प्यार से बोला कि देखो बहन आप हमारी बात सुन लो प्यार से, क्योंकि हमें दूसरा तरीका भी आता है आपसे बात करने का। हम सीआरपीएफ लेडी पुलिस को बुलाएंगे और वो आपको बहुत मारेगी, है ना। तो जब हमने ऐसे बोला उसको ना, फिर वो अपने भतीजे को देख रही थी बार बार कि इसका मुंह सूजा हुआ है और ये ना परेशान है। तो उसने भी बोला कि देखो आप मत इनको तंग करो, इनको दे दो जो बोल रहे हैं। तो आओ फिर अंदर आ जाओ मेरे घर के। तो घर के अंदर लेके गई तो आंगन था, एक आंगन में इतनी ऊंची घास थी। उसने कहा कि उस घास के बीच में रखा हुआ है हथियार। तो हम उतरे, वहां पे एक फिरन जो पहनते कश्मीरी उसमें वो हथियार था, उसको हम लेके आए। तो उसमें एक एके राइफल, मैगजीन 3 और 90 राउंड हम लेके सीधे कैंप में आए, उसको भी लेके आए। तब तक हमने सीए को रिपोर्ट दी। तो सीओ साहब जैसे आए तब तक हमने वो हथियार और सब सजा के टेबल पे रख दिया। इसको हमने कस्टडी में ले लिया था इस बंदे को। तो जब सीओ साहब ने देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि अरे एक हफ्ते में तुमने एक मिलिटेंट भी पकड़ लिया और है ना हथियार। फिर वो मिलिटेंट से मिले, काफी देर बात की। फिर उन्होंने कहा भाई जवान कहाँ है तुम्हारे, मैं सबसे मिलूंगा। फिर वो सबसे मिले, उन्होंने शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि देखो मैंने मेजर सती को सबसे टफ टास्क दिया था, ये इलाका जो दिया है ये सबसे टफ है लाल चौक का, और मैंने सबसे यंग ऑफिसर को ये टास्क दिया। जानते क्यों दिया? क्योंकि मुझे विश्वास था कि इनके अंदर कुछ ऐसी बात है जो ये कुछ करके दिखा सकते हैं। अभी पहली ना सफलता इन्होंने दिलाई इस पलटन को, अभी कितना हमको ना इज्जत मिलेगी, ब्रिगेडियर को पता चलेगा, जनरल को पता चलेगा। फिर उन्होंने बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए इनाम लाया हूं। तो इनाम क्या था कौन बताएगा? इनाम था एक केस रम और 500 रुपये। तो 500 रुपये तो सीधे कंपनी फंड में चले गए और बाकी तो मैंने सीएचएम के हाथ में दे दिया। मतलब भाई तुम्हारे लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि खुश हुए। उसके बाद हम वहां 2 साल रहे उस इलाके में। 5 कंपनियों में हम नंबर 1 आए। हमने 15 हथियार पकड़े, 7 AK राइफल, 8 पिस्टल, काफी सारा कैश पकड़ा, एक्सप्लोजिव्स पकड़ा। तो ये तो था। और करीब 40 से अधिक हमने मिलिटेंट्स पकड़े, जिसमें 3 महिलाएं भी थी जो उनको सपोर्ट करती थी मिलिटेंट्स को, उनको भी हमने पकड़ा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, हमारे जो सीओ साहब को, ब्रिगेडियर साहब को और जनरल साहब को पसंद आई हमारे बारे में और हमारी कंपनी के बारे में, वो ये थी कि हथियार पकड़ना तो इनका बहुत अच्छा इनका रोल रहा है, इनकी पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी है, पीआर। ये सबको जानते हैं, ये आईजी को जानते हैं, ये एसपी को जानते हैं, ये डीवाईएसपी को जानते हैं, ये थानेदार को जानते हैं, ये ना हेड कांस्टेबल को जानते हैं थानों के। तो एक ने मुझे पूछा सर आपका पीआर इतना तगड़ा कैसे है? कैसे आप इतने कुल जानते हो? तो मैंने कहा कि पीआर का मतलब क्या होता है? कहता है सर पीआर। मैंने कहा नो, पीआर इज प्यार। और प्यार कब बढ़ता है? जब आप कैसे देखते हो दूसरे को? आत्मा रूप में। अगर आप बॉडी रूप में देखोगे, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम, मैं इंडियन हूं, कश्मीरी, तो फिर डिफरेंसेस आती है। बट अगर आप भावना चेंज करोगे, वाइब्रेशन चेंज करोगे, तो फिर क्लोजनेस आती है। तो उस क्लोजनेस से वो लोग भी मेरे बहुत क्लोज आ गए, और तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि सर ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है आपका। तो मेरी बहुत पर्सनल फ्रेंडशिप थी। तो और सबसे बड़ी चीज, वहां पे कश्मीर आपको पता है खरीदारी के लिए बहुत फेमस है, आप बहुत सामान खरीद सकते हो अगर आपको नॉलेज है ना, वहां का शॉल, वहां का केसर इत्यादि इत्यादि। फिर वहां पे हाउस बोट्स हैं, आप सब जानते हो, और घूमने के लिए होते हैं वो हाउस बोट्स। पर वहां हाउस बोट में घूमना इतना आसान नहीं है जितना आप जानते नहीं हो। मेरी बड़ी अच्छी पहचान थी हाउस बोट वालों से, तो मैं कई लोगों को जो आते थे गेस्ट उनको घुमाता था वहां पे। तो इस प्रकार से हर जगह पे उनको लगा कि ना ये ऑफिसर फिट है, ये ऑपरेशंस के लिए भी फिट है, ये घुमा भी सकता है लोगों को, है ना ये। तो अंत में जब मैं वहां से निकल रहा था 97 में, हम वहां से निकल रहे थे, अक्टूबर की बात है, तो एक बहुत अच्छा हादसा, एक बहुत अच्छी बात हुई। और बात क्या थी कि मैं जिस जगह पे पोस्टेड था तब, तो हमको उन्होंने वहां रख दिया था पंथा चौक में हमें बिठाया। लास्ट 6 मंथ में पंथा चौक में था। तो वहां पे बहुत, आपको पता है, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके स्टोन क्रशर्स हैं, और वहां पे बहुत वो ना काम होता है पत्थरों का। तो उस कॉलोनी के लोगों ने मुझे बुलाया, बोला कि सर आप यहाँ पे करीब 6 महीने से हो, हम आपको देख रहे हैं काम करते हुए, आपने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, आपने अपना काम तो नहीं रोका मिलिटेंट्स को पकड़ने का, बट आपने हमारा भी बहुत ख्याल रखा, तो हमारा एक विचार है कि हम आपको फेयरवेल देंगे। तो मैंने कहा कि देखो हमने तो अपनी ड्यूटी की है, तो हम फेयरवेल तो लेते नहीं है। तो बहुत जिद की उन्होंने कि नहीं सर हम आपको फेयरवेल देंगे, आपको आना पड़ेगा। तो मेरे सीईओ से पूछा उन्होंने कि बिल्कुल जाओ, है ना, और अपने सुरक्षा का ध्यान रखना। तो हम जब फेयरवेल में गए, तो भाषण में उन्होंने लास्ट में से पूछा, जो वहां के मुखिया था, ग्राम प्रधान, कि सर हम मुख्यमंत्री के बहुत पर्सनल फ्रेंड हैं, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे अगर आप अनुमति देते हो तो। मैंने बताइए क्या गुजारिश करेंगे आप? कि सर इनकी पलटन जा रही है, भले जाए, मेजर सती को रोक दो। तो मतलब ऐसा उनको फीलिंग आई कि ये अगर रुक जाएगा तो शायद हमें और उतना अच्छा समय आगे के लिए मिलेगा। तो हम तो रुक नहीं सकते थे, पलटन का तो नियम होता है, सब साथ जाते हैं, बट आपकी आध्यात्मिकता में वो पावर थी कि वो उनको अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये तो था एक सुंदर किस्सा। अब इस आधार पे मेरा वो टेन्योर बहुत मस्त रहा। उसके बाद मुझे दोबारा कश्मीर जाने का मौका मिला 2011 से 13। तो चूंकि पहला टेन्योर इतना प्यारा था, तो मैं दूसरी बार जब गया तो मैं बहुत खुशी से गया, मुझे कोई डर नहीं था। मैं उन लोगों से मिला जो पहले मेरे दोस्त बने थे, और बहुत खुश हुए उन्होंने। दूसरी बार तो मेरा बहुत इज्जत किया, मेरे गेस्ट का भी उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दिखाया। अच्छा, उसके बाद सेकेंड थिंग, जब मैं वहां से, हम लोग धीरे धीरे मेरी सर्विस बढ़ती गई, तो जैसे ही मेरी सर्विस 12 साल की हुई, तो हमारी पलटन पहुंच गई कारगिल बटालिक। तो बटालिक आप सब जानते हो, 2001 की बात कर रहा हूं मैं, तो 99 में कारगिल का युद्ध हुआ, है ना, सब जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हमको झेलना पड़ा। अच्छा, उसके बाद के हालात कैसे थे जानते हैं आप सब? फायरिंग होती थी, बहुत फायरिंग होती थी उस इलाके में, जिसको बोलते हैं, है ना, बॉर्डर फायर बहुत होता था वहां पे। अभी तो सीज फायर है, पर पहले बहुत फायर होता था। तो हम जहां थे बटालिक में, वहां भी बहुत फायर होता था। तो मैं आगरा में था, आगरा से हमें रिपोर्ट मिली कि अब आपको कारगिल जाना है। तो आगरा में मैं 2 साल, करीब 2.5 साल इंस्ट्रक्टर था, पढ़ाता था मैं। वहां पे स्कूल है आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, तो वहां पे मैं पढ़ाता था। तो मुझे बताया कि सर अब आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है और आपको अपनी पलटन में जाना है, और पलटन जा रही है कारगिल बटालिक। ठीक है, तो मैंने पहले पता किया वहां पे क्या स्थिति है। तो पता चला कि स्थिति खराब है, बहुत फायरिंग होती है, आए दिन जवान घायल होते रहते हैं, मर भी जाते हैं, और स्थिति कोई अच्छी नहीं है, और ठंड बहुत है, और वहां पे बर्फ बहुत गिरती है, 8 फीट बर्फ गिरती है, और -20 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मैंने अपने को मेंटली तैयार किया। देखो जब भी हमें कोई टास्क मिलता है ना, तो कैसे उसको पहले समझो क्या मिला है, उसको अप्रिशिएट करो, फिर अपने को मेंटली तैयार करो उसके लिए, फिर परमात्मा को सौंप दो कि आपकी याद में मैं वहां जाऊंगा और मैं सेवा करूंगा। और एक और फॉर्मूला खुश रहने का, कि पहले से वहां पे अपनी वाइब्रेशंस अच्छी भेज दो, जिसे कहते हैं गुड विशेस, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं भेज दो। तो मैंने वही ड्रिल फॉलो किया। तो जैसे मैं बटाली कारगिल पहुंचा तो सीओ साहब ने बोला कि भाई आपको मैंने 10,000 से लेके 17,000 की जो पोस्ट है उसका कमांड दिया है, करीब करीब आपके नीचे 10 पोस्ट होंगी और आपको इनको कमांड करना है। ठीक है सर। तो मैंने अपनी कंपनी को तैनात करना शुरू किया, मैं हर पोस्ट पे गया। आपको सबको पता है पहाड़ों में कोई भी रोड नहीं होती है, कोई भी और व्यवस्था नहीं होती है, सब कुछ कैसे करना पड़ता है, सब कुछ पैदल चलना पड़ता है। और पैदल भी चलते तो आपके पीठ में क्या होता है, आपका लोड होता है और आपके साथ आपका हथियार होता है, तो मतलब करीब 25 केजी तो आपको लेके चलना ही पड़ता है। खैर मैं सभी पोस्टों में गया, सभी पोस्टों में मैंने ये देखा कि जो दुश्मन था वो हमारे कहीं पे बहुत नजदीक था। जैसे एक जगह पे दुश्मन मात्र 15 मीटर पे था, बताइए 15 मीटर पे दुश्मन बैठा है, उसको आप देख सकते हो ऐसे अच्छे ढंग से उसकी शक्ल को। कहीं पे 50 मीटर पे बैठा हुआ है, कहीं पे 100, कहीं पे 200 ऐसे। तो जो सबसे ऊंची पोस्ट थी 17,000 पे, वहां पे वो हमसे 50 मीटर की दूरी पे था और हमसे करीब 150 फीट ऊपर बैठा हुआ था। तो उसको हमारा आधा पोस्ट भी दिखता था कि हम कहां जा रहे हैं आ रहे हैं, उसको दिखता रहता था। तो जब मैं वहां पहली बार गया तो मैंने देखा कि हमारे जवान उनसे बातें कर रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई यहाँ पे क्या हालात है, कहते सर यहाँ पे शांति है। गुड। तो मैं कभी अपने जवानों से ही नहीं बोलता था कि फायर करो, मैं उनसे ये कहता था कि अलर्ट रहो, LC का ध्यान रखो, दुश्मन अगर कार्रवाई करता तो जवाब देना है, ठीक है, बाकी फालतू में पंगा नहीं लेना है। ठीक है सर। तो अक्टूबर का महीना आया 2001 में, ठंड स्टार्ट हो गई, बर्फ भी हल्की हल्की शुरू हो गई। तो ये जो 17,000 पे हमारा पोस्ट था, हम 17,000 पे, दुश्मन 17,000 200-300 पे। अब दुश्मन शांत, हम भी शांत, बट अक्टूबर के महीने में ये दुश्मन एक नया मोर्चा बनाने लगा जिसका मुख हमारी तरफ, ऑलरेडी 3-4 मोर्चे उसके थे। तो हमने जब देखा मरा रहा है, तो वहां पे मेरे नीचे कैप्टन था, 2 महीने की सेवा, EME का ऑन अटैचमेंट आया हुआ था, तो उसको रखा गया था। और मैं 15,000 पे कंपनी हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था, तो रोज मुझे रिपोर्ट देता था। तो उसने बताया कि सर यहाँ पे ये लोग मोर्चा बना रहे, हमने इनको समझा दिया है ये कि मत बनाओ, तो ये लोग मान नहीं रहे, क्या करना चाहिए। तो हमने बोला रेड फ्लैग दिखाओ, रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग दिखाया उनको, वो नहीं माने, काम चल रहा है उनका। तो सर क्या करना चाहिए, तो मतलब चलो कमान अधिकारी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है हवा में एक बस्ट मारो LNG का, ठीक है। तो हमारे कमान अधिकारी महोदय जो थे ना, वो इतने शौकीन थे फायरिंग के कि रात को अगर 1 बजे भी पूछोगे ना क्या करना है, कहते हैं पूरे मशीन गन खोल दो उसके ऊपर। तो अभी उन्होंने कहा कि ठीक है एक बस्ट उसके ऊपर मारो, पर हवा में मारना, उसको मत मारना। तो हवा में उस यंगस्टर ने LNG का एक बस्ट मारा, तो जैसे ही बस्ट गया पाकिस्तान के इलाके में, तो उन्होंने काम रोक दिया, क्योंकि वो तो सरप्राइज हो गए कि ये क्या हुआ। उन्होंने अच्छा हमसे पंगा, तो वो अपने मोर्चों में गए, उन्होंने कॉक की अपनी राइफलें, और वो हमें 3 जगह से घेरते थे, ऊपर और इधर से इधर से, उन्होंने 3 जगह से हम पे फायर स्टार्ट कर दिया। और कितने दिन तक किया, 3 दिन 3 रात। ये जो यंगस्टर था कैप्टन, जिसकी सर्विस मात्र 2 महीने थी और EME का था, अटैचमेंट पे आया था, ये घबरा गया कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि सोल्यूशन कहां पे है। वो फायर तो कर रहा था, फायर का जवाब फायर से हो रहा था, बट अब ऊपर से फायर आ रहा है नीचे, और नीचे से ऊपर जाता तो असर किसका होगा, तो वो घबरा गया। तो तीसरे दिन जब उसकी रिपोर्ट हमें मिली, तो कमान अधिकारी के साथ में बैठा हुआ था बेस में, बैटालियन हेडक्वार्टर गया हुआ था मैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये स्थिति तो थोड़ी खराब है वहां पे, मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही है, तो तुम एक काम करो, ये रात 9 बजे की बात है, तुम अभी इसी वक्त अपनी टीम को लो और चले जाओ। कहां चले जाओ, 17,000 पे चले जाओ, और उस पोस्ट की कमान अपने हाथ में ले लो, और उस यंगस्टर को वहां से रिलीफ करो। मैंने ठीक है सर बिल्कुल। तो मैंने अपनी टीम को तैयार किया, हमने मेडिटेशन किया, हम चल पड़े। अब 8,000 पे हम थे, हमको 17,000 पे जाना था। आप समझ सकते हो जैसे जैसे पहाड़ पे हम ऊंचाई चढ़ते हैं तो क्या कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो आपकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है, फिर पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। तो हम पहले दिन तो चले 13,000 तक, तो रात के 2 बज गए थे, फिर हमने रेस्ट लिया, फिर अगले दिन हमने 8 बजे स्टार्ट किया तो हम 15,000 तक पहुंचे, फिर रेस्ट लिया, फिर 15,000 से 17,000 का जो रास्ता था ना, उसमें 50% रास्ता दुश्मन को दिखता था, कौन आ रहा है और जा रहा है, तो वो अपने मशीन को लेके उस रास्ते पर रेडी थे कि अगर कोई आया वहीं पे ढेर, तो इसलिए हमने दिन में जाना उचित नहीं समझा। हमने रात 7 बजे जैसे अंधेरा हुआ, डार्क हो गया, हमने बोला चलो। तो हमने फिर मेडिटेशन किया तो देखा अरे बर्फ गिर रही है। अरे ये क्या हो गया? तो बर्फ गिर रही थी यार, हमने तो ड्रेस पहना ही था, बट मैंने सोचा कि कम गिर रही तो कोई बात नहीं, ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम धीरे धीरे चलने लगे तो वो तनी कहां से उसको खबर लगी, वो इल्यूमिनेशन राउंड फायर करने लगा। अब इल्यूमिनेशन राउंड जानते हैं ना, उससे क्या होता है 30 सेकंड तक रोशनी हो जाती है। तो जैसे रोशनी हो हम सब जमीन पे लेट जाए, क्योंकि खड़े होंगे तो मारेगा। फिर जैसे अंधेरा हो फिर हम चले, फिर दूसरा राउंड, फिर लेट जाए। वैसे 3-4 बार उसने हमको लिटा दिया, क्योंकि वो मारने के मूड में था हमको। तो हम 3-4 बार लेटे तो बर्फ तो गिरी रही थी, तो मेरे हाथ पूरे अकड़ गए, क्योंकि आप पता है बर्फ तो मैं तो हाथ अकड़ जाते हैं। खैर हम धीरे धीरे चलते रहे, पर मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा जो माइंड था ना, मन जो था वो बहुत खुश था, एकदम इंजॉय कर रहा था मैं इस जर्नी को। मेरे आगे 2 कमांडो, मैं 3रे नंबर पे था, मैं आराम से धीरे चल रहा था। रात 12:15 बजे हम पहुंचे कहां, उस पोस्ट पे। तो चलते चलते मैं वाइब्रेशंस दे रहा हूं उस पोस्ट को, पीसफुल वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। तो 11 बजे, 11:15 बजे मेरे कानों में आवाज आ रही है फायरिंग की, टड़क टड़क। तो मुझे लग रहा कि फायरिंग चल रही है अभी भी, बट 11:30 बजे के बाद फायरिंग बंद। और जैसे मैं 12:15 बजे पहुंचता हूं, कोई फायर नहीं, बिल्कुल शांति। तो वो अफसर आया मुझे रिसीव करने, कैप्टन साहब, बड़ा डरा हुआ, घबराया हुआ, सोच रहा था कि मेजर, इतना सीनियर मेजर आ रहा है तो नहीं गाली वाली देगा, अभी डांटेगा मेरे को। तो मैंने इसको प्यार से मोटिवेट किया, गुड, वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया, आपने ना पोस्ट को संभाल के रखा, अब आप जाओ 16,000 पे, मैं आपको जब बुलाऊंगा तब आना, अब हम इसको ना इसको टैकल करते हैं। तो मैंने फिर वहां एक छोटा सा मंदिर था, खड़ा हो गया, 2 मिनट मेडिटेशन किया, एक ही चीज भगवान को बोला, फॉर्मूला जो मैंने यूज किया वो क्या था, अब आप संभालिए, हम आ चुके हैं, है ना, अब आपको संभालना है। खैर मैं अपने बंकर में पहुंचा, बहुत थक गया था। अगले दिन सुबह 9 बजे जैसे तैयार होकर आता हूं तो CHM बोलता है, सर, अच्छा तैयार होने से पहले मैं ना, मेरी एक बहुत आदत है, जब से मैंने इस ज्ञान को पकड़ा है, 40 ईयर्स हो जाते हैं अभी, तो मैं डेली ना टू टाइम्स नहाता हूं, 2 बार मेरा स्नान होता है। तो और नहाना मतलब प्रॉपर नहाना। तो मैं जैसे उस दिन उठा सुबह कारगिल में ना, उस हाइट पे 17, मैंने पूछा अपने स्टाफ से, भाई मुझे नहाना है अभी, मेरी तैयारी करो। तो हंसने लगा, मैंने कहा भाई आप हंस रहे हो, क्या सर यहाँ पे जो भी आता है वो हफ्ते में एक दिन नहाता है, 15 दिन में नहाता है। मैं क्यों नहाता है 15 दिन में? कहता इतना ठंड है सर, देखो ना सर कितनी ठंड है यहाँ पे, और ना। तो मैंने नो, मैं तो रोज नहाऊंगा, है ना। तो मैंने कहा व्यवस्था, तो वहां व्यवस्था नहीं थी, बताइए आप, उस पोस्ट में नहाने की व्यवस्था नहीं थी ठीक से एक ऑफिसर के लिए, इसलिए वहां जो भी अफसर आता था वो 3 महीने बाद उतर जाता था, 2 से 3 महीने मैक्सिमम रह के वो डाउन दूसरे पोस्ट में। तो मैंने बोला नो, मैं तो खैर अपना नहाऊंगा, जैसे भी मैं व्यवस्था करता हूं, बट इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। पर अभी मेरा ध्यान उस पर था नहीं, मेरा ध्यान अभी दुश्मन पे था। तो CHM ने बोला, सर आप तैयार हो चुके हो, तो मैं जब भी तैयार होकर बाहर निकलता हूं तो मैं मेडिटेशन करके बाहर आता हूं अपने ऑफिस कमरे से। तो उसने बोला कि सर फायरिंग शुरू करें इस पे, मैंने नहीं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा वॉच करते हैं। बट 1 बजे जैसे मैं लंच के लिए बैठा और स्टार्ट किया लंच, तो मेरे कानों में आवाज टटक, बाहर आके देखता हूं कि दुश्मन का फायर, हैवी फायर, RPG से फायर कर रहा है, RPG है ना, उसके RPG के ना MMG से फायर हो रहा है, और हमारी पोस्ट हिल रही है ना। उसका लक्ष्य था कि मारो इनको सबको, तो हमने भी फायर स्टार्ट किया, बट 2 घंटे तक मैंने देखा कि उसका असर ज्यादा हो रहा था। तो मैंने बोला अब क्या कर रहा है, तो मैं अपने को वॉच कर रहा था क्या है मेरी स्थिति है, एकदम बैलेंस, एकदम बिल्कुल पीसफुल। तो मैंने सोचा कोई इसको जवाब तगड़ा देना चाहिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। थोड़ी देर मेडिटेशन किया, एकदम एक विचार आया, बहुत अच्छा विचार आया, इस पे 81 mm मोटर फायर करो तोप के गोले। अब मैंने सीधे CEO को फोन लगाया, फोन मतलब सेट पे बात किया, मैं सर मुझे 81 mm मोटर का फायर चाहिए। नो सॉरी, क्यों बोला सॉरी उन्होंने, कि आपकी दोनों की दूरी बहुत कम है, और मैं अगर मोटर फायर करूंगा तो कैजुअलिटी कौन हो सकते हैं, आप हो सकते हो, तो मैं नहीं करूंगा। मैंने नहीं सर, फिर मैंने तो कन्विंस किया, आप एक गोला फायर करो, ओनली वन, और फिर देखते हैं कहां गिरता है। उन्होंने एक्यूरेट रीडिंग ली, बिल्कुल बढ़िया ढंग से एक गोला फायर किया, और सीधे वो हमारी बाउंड्री वॉल पे गिरा, और बाउंड्री वॉल तोड़ती।
कहता है कहां गिरा? मैंने सर हमारी बाउंड्री वॉल पे। कहता है मैंने सर चिंता नहीं करो, पत्थर की है, बना दूंगा बहुत अच्छी। फिर मैंने सर हाइट दो इसको, हाइट उन्होंने तो हाइट दिया तो सीधे पाकिस्तान के ऊपर गिर गया। मैंने सर गिर गया टारगेट पे, क्या करना है? मैंने सर आठ के आठ तोप खोल दो अभी आप। तो पांच बज रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने आठ तोप खोले तो सौ के करीब राउंड सीधे दुश्मन के सर पे। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा ये एक्शन लेंगे। वो तो अभी सोचे थे बेचारे बेचारे कर रहे थे हमारी तरफ देख के। ओ ऐसे भागे अपने बंकरों में ना, जैसे मरे चिल्लाते हुए भागे, चुप हो गए। अब साढ़े पांच बजे रहे, एक दिन पहले साढ़े ग्यारह तक हमको डरा रहे थे फायर करके, और अभी साढ़े पांच बजे चुप, बिल्कुल शांत। तो हम भी शांत हो गए क्योंकि हम तो वैसे ही शांत प्रिय थे। अगले दिन नौ बजे तक कुछ फायर नहीं आया। तो नौ बजे सी एच आ के बोलता है सर क्या करना है? मैंने कहा गुड मॉर्निंग, किसको? मैं पाकिस्तान को। कहते वो कैसे करेंगे? मैंने कहा सौ राउंड फायर करो इस पे, तोप के, तुम नहीं करो तोप के गोले फायर होंगे। तो सीओ को रिंग किया, मैंने क्या चाहिए? मैंने सर सौ राउंड गोल के तोप के फायर चाहिए, गुड मॉर्निंग करना है इसको। तो उन्होंने फिर खोल दिया। सीओ तो हमारे बहुत खुश थे ना, वो तो बहुत खुश थे, फायर मतलब उनकी खुशी। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा अभी भी करता हूं। तो फायर आया तो दुश्मन तो बिल्कुल ही डर गया एकदम। उसके बाद करीब 15 से 20 दिन दुश्मन का कोई फायर हम पे नहीं है। बट उसने क्या किया, दोस्ती तो नहीं की हमसे, दुश्मनी बनाए रखी। और हमारा जितना एडम मूवमेंट था, पानी का, राशन का, है ना, वो सब बंद कर दिया। क्योंकि उसको तो हमारा पोस्ट दिखता था, तो जहां जहां उसको दिखता था अगर हम जरा मूवमेंट करें वो फायर कर दे। तो हमारी सारी मूवमेंट रात को होती थी, अंधेरे में होती थी, बिना लाइट की होती थी। मतलब जैसे कीड़े रेखते ना, हम लोग रेखते थे। और इतनी टफ कंडीशन में हमको रहना पड़ रहा था कि, पर हमें अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था। फिर मैंने सोचा भाई इससे बाहर कैसे आना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति लंबा नहीं चल सकती ना ऐसी स्थिति। और अक्टूबर का महीना, बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। तो 15-20 दिन बाद मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अध्यात्म में होते हैं, एक चीज आपके लाइफ में आएगी। और वो चीज क्या आएगी पता है? आप पॉजिटिव थिंकर बन जाएंगे, आपकी थिंकिंग में पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी परसेंटेज। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा करने लगा क्योंकि मैं देख रहा था स्थिति खराब है। तो मुझे एक फीलिंग आई स्ट्रांग कि यहां पे ये दुश्मन तो डर गया, इसके तो इससे तो अभी डरने की जरूरत नहीं, इसको तो अभी हम दोस्त बना सकते हैं। यहां पे जो दूसरा दुश्मन है जिससे भी लोग मरते हैं वो है बर्फ, जिसमें फिसल के लोग मरते हैं। अब उसकी तैयारी करो क्योंकि 8 फीट बर्फ बहुत ज्यादा होती है और -20 डिग्री टेम्परेचर भी बहुत होता है। तो मैंने करीब 20 दिन बाद सीओ को, जब मैं रोज रिपोर्ट देता था, तो उस दिन मैंने सीओ को बोला कि सर आज आपसे लंबी बात करनी है। कहता है ओके करो। मैंने सर मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि एलसी सुरक्षित है और सब ठीक है। कहता है सती जब से तुम वहां पहुंचे हो और बैठे हो मैं इतना निश्चिंत हूं कि मुझे कोई घबराहट नहीं है, यू आर डूइंग ए गुड जॉब। मैंने सर मेरी आगे की बातचीत यह है कि अब मैं यहां पे शांति स्थापित करना चाहता हूं, फ्रेंडशिप विद द एनिमी, सो दैट ये फायरिंग बंद हो। और दुश्मन नंबर टू से तैयारी करना चाहता हूं, वो है बर्फ। तो जैसे मैंने कहा ना शांति, उसको बड़ा धक्का लगा, है शांति। मैंने बोला सर मैं समझता हूं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो दुश्मन की गोली से तो शायद कोई नहीं मरे पर फिजिकल कैजुअलिटी हमको हो सकती है। अच्छा, उन्होंने सोचा समझा, कहता है ठीक है तो शांति कैसे करोगे आप, कर सकते हो आप? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप इजाजत दें। कहते ओके कैरी ऑन। तो मैंने तुरंत एक जवान को बुलाया, मैंने इधर आओ, पहले तो तुम बात करते थे दुश्मन से? मैं दया सर कैसे बोलते थे? साथी चिल्लाना आज, साथी हमारे टाइगर आपके टाइगर से कल शाम 4 बजे बात करेंगे। कहते ठीक है साहब। वो चिल्लाने लगा खूब, पाकिस्तान वाले कोई जवाब ना दे। जब बहुत चिल्लाया इसने तब जवाब आता है वहां से, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगले दिन शाम 4 बजे मेरे जवान बाउंड्री वॉल पे एम कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान वाले अपनी बाउंड्री वॉल से हम पे एम करके खड़े। नए कमरे से बाहर निकला मेडिटेशन करके, कोई हथियार नहीं हाथ में, कुछ नहीं, सीधे गया बाउंड्री वॉल पे, वहां पे एक चबूतरा था उस पे खड़ा हो गया। अब छाती से ऊपर, यहां से ऊपर मुझे वो देख रहा है आराम से, और मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं ऐसे करके ना ऐसे, और यहां से इतना छोटा हाथ हिल रहा है। खैर मैंने बोला टाइगर दिस इज मेजर रवि, वैसे तो मेरा नाम मेजर सती था पर मैंने बोला मेजर रवि स्पीकिंग टू यू। देखो दोस्त कुछ कारण से हमारे बीच में फायरिंग हो रही है, हो रही थी, अभी भी दुश्मनी बनी हुई है, आप कुछ बना रहे थे हमने इतराज किया, बट अब सुन लीजिए भारत की इस पोस्ट से आप पे कोई फायर नहीं आएगा। एक भी गोली नहीं फायर होगी, आपको कुछ बनाना है तो बनाओ, मेरी तरफ से ताजमहल बनाओ वहां पे। अब वहां पे दुश्मन दुश्मन है वो, पर देखो पॉजिटिव वाइब्रेशन का असर क्या होता है, ये मैंने आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जो पॉजिटिव वाइब्स थी, हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो उस तक पहुंच रही थी, उसका जवाब बहुत प्यारा आया, सुंदर जवाब। सर हम भी शांत प्रिय सैनिक हैं, पहला उसने स्टेटमेंट ये बोला। सर हम भी आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आपके ऊपर अब पाकिस्तान से कोई फायरिंग नहीं होगी, एक गोली भी फायर नहीं होगी, और जो हरकत आपकी बिल्कुल बंद है अभी से आप अपनी पूरी हरकत शुरू कर दें। मैंने कहा दोस्त मैं आगरा का रहने वाला हूं, तुम अपनी वाइफ और परिवार के साथ आगरा घूमने आना। कहता है सर मैं पेशावर का हूं, आप पेशावर आना। उसके बाद तो हमारी एक घंटे बात हुई, रात को जो जवान थे जो एक दिन पहले तो फायर कर रहे थे डरे हुए थे, आज कह रहे अरे यार साथी एक शेर सुना दे यार, तो शेरो शायरी चल रही थी उनकी, तो मैं चुपचाप उनके उसका भी आनंद ले रहा था। अब अगले दिन 9 बजे सीएचएम आके कहता है सर ये जो पाकिस्तान का सेंट्री खड़ा है ना ऊपर, मैंने हाँ, ये सर चिल्ला रहा है बहुत ज्यादा। मैंने क्या बोल रहा है, मैंने कहा मेरे कान में भी कुछ आवाज तो आ रही है। कहता सर ये बोल रहा है साथी हरकत करो हरकत करो। तो सर हम तो नहीं करने वाले। मैं क्यों? कहते सर ये पाकिस्तान है, मुंह में राम बगल में चोरी, हम जाएंगे ये मशीन गन खोल देगा और पता चला सर गए, फिर हम कुछ तो कर नहीं सकते। मैं चलो ठीक है बात तो तुम्हारी भी करेक्ट है, मैंने बोला अब मैं जाता हूं। तो मैं सीधे उस स्थान पे गया जहां पे सर से लेके पांव तक मैं उस सेंट्री का टारगेट बन गया। अब वो चाहता तो मुझे उड़ा सकता था क्योंकि मैं उसके टारगेट था, तो मैंने उसकी तरफ ऐसे हाथ हिलाया ना मुस्कुराते हुए, तो उसने भी अपना क्या किया हाथ बाहर निकाला और मुझे इशारा किया हंसते हुए ऐसे। तो फिर मैं वहां वॉक किया, मैंने कह रही 20 मीटर का इलाका था, मैं वॉक किया, फिर मैंने सीएचएम की तरफ देखा। सीएचएम कुछ हुआ मुझे? कहते नहीं सर। मैं क्यों डर रहे हुए? डरना नहीं है, इसने हमको दे दिया मौका, अभी देखो हमारा सारा राशन इसने तोड़ दिया है, राशन स्टोर कपड़े का स्टोर सब तोड़ दिया, देखो कैसे तोड़े हैं इसने फायरिंग करके, इसको ठीक करना है, तो चलो बाहर आ जाओ सब। तो सब बाहर आ गए, तो मैंने सीओ को कॉल किया, सर हमने शांति स्थापित कर दी है, पोस्ट का हाल बहुत बुरा है, अगर आप आए तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें आप कुछ दिशा निर्देश देके जाएंगे। कहता है सती कल सुबह मैं तुम्हारी पोस्ट में हूंगा। अगले दिन सुबह सीओ साहब पोस्ट में, देखा उन्होंने पोस्ट का निरीक्षण किया तो उनको बहुत अजीब सा लगा कि दुख सा लगा कि यार ये तो बहुत बुरा हाल कर दिया इसने और इनकी हालत भी ठीक नहीं है। तो बोलता क्या चाहिए तुझे? मैंने तब तक मैं अपनी होमवर्क करके लिस्ट बनाई थी सामान की, बोला अभी भेजता हूँ सारा सामान तेरे पास और इंजीनियर के 6 बंदे भी भेजूंगा। तो तुरंत लोग आए और 1 महीने में आप बिलीव नहीं करेंगे उस पोस्ट को हमने बहुत अच्छा बनाया। सबसे पहले मैंने अपने लिए 2-in-1 बाथरूम बनाया। तो अभी वहां पे हम 1.5 साल रहे, उसके बाद 1.5 साल जानते हो दोस्तों, उस 1.5 साल में एक भी गोली फायर नहीं होनी थी। और एक दिन मैं लंगर में पहुंचा किचन में, क्योंकि मेरे पहले तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने बोला चलो अब मेरे पास टाइम है शांति है, तो मैंने देखा सारी चीजें अव्यवस्थित रखी थी, तो सब ठीक करता गया। तो किचन में पहुंचा जहां कुक खाना बना रहा था, तो क्या देखा कि कुक बिल्कुल काला हो रखा है तो था तो बहुत गोरा चिट्टा काला हो रखा है। फिर देखा दीवार में खूब सारी फोटो है, तो श्रीदेवी भी थी, हेमा मालिनी भी थी। तो मैंने उसे बोला कि भाई साहब ये बता दो जब इतनी फायरिंग हुई तो कौन सी देवी आई? कहता सर मुस्कुराने लगा है ना, शर्मा गया। मैंने कहा कि इन सब देवियों को हटा दो अभी है ना, अभी यहाँ भगवान का स्थान होगा, ठीक है, ये भोजन बन रहा है हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ पे शुद्धता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने बहुत पोस्ट को सजा दिया, एकदम बहुत ब्यूटीफुल बना दिया, 2 मोर्चे भी हमने अलग से बनाए चुपचाप, उसको पता भी नहीं चला दुश्मन को कहां से मोर्चे बना दिया, और हमने बिल्कुल दुश्मन को फेस करते हुए पीछे से बना दिए। तो वो पोस्ट में हम इतनी देर रहे, तो जब हम वहां से निकले तो दैट वाज फरवरी 2003 हम वहां से निकल गए और हम मेरठ आ गए। 2003 दिसंबर में अगर आप सबको याद होता है मुशर्रफ जी भारत आए थे, आगरा आए थे, और एक युद्ध विराम संधि हुई थी वाजपेयी जी के साथ जिसमें युद्ध विराम एक्सेप्ट किया गया और राइट फ्रॉम जम्मू टिल सियाचिन सारा युद्ध विराम घोषित हो गया, जिसको बोलते हैं सीज फायर हो गया।
तो हमारा इलाका भी हो गया जहां पे हम थे, जहां इतनी फायरिंग हो रही थी। तो हमारे बाद वहां पे जो पलटन आई, उस पलटन के कमान अधिकारी से मेरी मुलाकात अप्रैल 2004 में एक पार्टी में, फंक्शन में हुई। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा, हेलो मेजर सती, हाउ आर यू? मैंने सर आई एम वेरी फाइन। कहते हैं तुझे पाकिस्तान वाले याद कर रहे थे। तो मैंने सर पाकिस्तान वाले, हाउ इज इट पॉसिबल? कहते हैं देखो 2003 दिसंबर में वहां युद्ध विराम हो गया, पता है, सीज फायर। मैंने बोला सर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, बोलो। मैंने बोला सर मैं वहां पे बहुत मेडिटेशन करता था, मैं जब भी शाम को बाहर निकलता था सुबह, तो मेरा आधा टाइम सिर्फ उस इलाके में वाइब्रेशंस फैलाने का होता था पीस के। मुझे लगता है सर शायद वो भी कुछ काम कर गई जो है ना आज सीज फायर है उस इलाके में। कहता सती जनवरी का महीना, सीज फायर, 8 फीट बर्फ, हमारा जवान बाहर निकलता है रात को बाथरूम के लिए, फिसल जाता है, 200 फीट नीचे चले गया, पता नहीं चला, रात भर परेशान। अगले दिन सुबह देखा, अरे वो तो गिरा पड़ा है नीचे, इलाका पाकिस्तान का है जहां गिरा पड़ा है, मर गया है, अब क्या करें, बॉडी तो लेनी है। व्हाइट फ्लैग दिखाया, उन्होंने भी व्हाइट फ्लैग दिखाया, गए उन्होंने दिया बॉडी, 1 घंटे बातचीत की, खूब अच्छी बातचीत की, लास्ट में तेरे को याद किया, बोला वो मेजर सती किधर गया तुम्हारा? तो उन्होंने कहा नो मेजर रवि। कहते हैं सर हमें तुम्हारे सभी ऑफिसर्स का पूरा पता है कौन क्या है, बताइए क्यों पूछ रहे हैं आप? कहते हैं नहीं सर ऐसे नहीं है, हमको इसके लिए पूछ रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं वो ऑफिसर जो था बहुत लंबे समय तक उस पोस्ट में बैठा रहा, आपके हर ऑफिसर वहां पे 2 से 3 महीने ज्यादा नहीं रुकते थे, और दूसरी चीज उसकी जो पॉलिसी थी, नीति, जी और जीने दो, वो हमें बहुत पसंद आई। सर उसको बोलना कि हमने अपना सलाम भेजा है उसको। तो देखिए अध्यात्म की सुंदरता कि आपके तो जवान सलाम कर ही रहे हैं, दुश्मन भी आपको सलाम कर रहा है। अभी लास्ट में किस्सा सुनाता हूं खत्म करने से पहले, कि 2006 से 2008 मुझे आसाम राइफल्स में भेजा गया, वहां पे मैं एक पलटन का टॉयसी था। आसाम राइफल्स से कोई आए तो आपको बता के खुशी होगी कि मैं 26 आसाम राइफल्स का टॉयसी रहा हूं 3 साल तक। तो हमारी पलटन पहले तो जेरीबाम में थी, उसके बाद हम लोग आए कहां, कोहिमा नागालैंड। तो जब वहां पे थे तो मेरे बारे में एक प्रचलन, एक बातचीत फैल गई पूरे आसाम राइफल में कि ये ऑफिसर व्यवस्था करने में बहुत अच्छा है ना, कोई भी अगर कार्यक्रम हो उसकी व्यवस्था ही बहुत अच्छी कर सकता है, इसके अंदर वो कला है। तो ऐसी एक बात फैल गई, क्योंकि कुछ कार्यक्रम हुए, हमने अच्छा किया, तो वो बात वहां तक पहुंच गई। तो डीजी साहब को जब पता चला कि मेजर सती हैं कोहिमा में इस पलटन में और वो व्यवस्था अच्छी करते हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि इस ऑफिसर को बोलो कि ये आसाम राइफल डे जो मनाया जाता है हर साल दिल्ली में अप्रैल के महीने में, उसमें इसको शामिल किया जाए एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो मुझे मैसेज मिला कि आप आ जाइए, तो मैं पहुंच गए शिलांग मुख्यालय, वहां मीटिंग हुई, मीटिंग में कर्नल साहब बैठे हुए, तो 7 ऑफिसर्स को छांटा गया कि आप 7 के साथ दिल्ली जाएंगे टीडी में और इस कार्यक्रम में आपको अपना योगदान देना है। तो मैंने बोला जी सर बताइए क्या काम करना है, तो सबको काम बता दिया, 6 के अफसर्स को, अब मेरी तरफ मेरी बारी। तो वो जो कर्नल साहब थे बताने वाले, जो ड्यूटी बांट रहे थे, मुझे जानते थे, है ना, उनसे मैं मित्रता थी मेरी। तो पहले हंसने लगे मुझे देख के, है ना, थोड़ी देर। तो मैंने सोचा कि शायद इतने दोनों बाद मिले हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए हमने स्पेशल काम चुना है मेजर सती, तो मैं कर्नल था उसका, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो लेफ्टिनेंट कर्नल सती हमने आपके लिए स्पेशल सेवा करनी है, आपको स्पेशल टास्क सुना है। मैं सर आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आप बताइए तो सही क्या करना है, तैयार हो? मैंने बिल्कुल तैयार है सर, आप बताइए तो सही क्या करना है। आपने इस पार्टी में सभी को शराब और सिगरेट पिलाना है। मैंने कहा सर आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं, मैं कैसा जीवन जीता हूं, है ना, और आप मुझे ये टास्क दे रहे हो? कहता है इसलिए तो दे रहा हूं, इसलिए तो दे रहा हूं। तो मैं सर ये आदेश है? कहता है ये आदेश है। मैंने सर बिल्कुल मैं करूंगा, आई विल डू इट। अब मुझे तो ना तो सिगरेट के नाम पता है ना शराब के नाम पता है, अब 20 दिन का टाइम था। बोला सती एक और बात सुन लो, मैंने जी सर, आपको 5 नागा कपल्स को भी लाना है नागालैंड से, जो अलग अलग ट्राइब्स के होंगे, और जो पार्टी जहां होगी उसमें अलग अलग स्थान पे है ना वो खड़े होंगे अपने ट्राइबल ड्रेस में। मैंने सर चलो वो भी हो जाएगा सर।
अब हो क्या जैसे आएगा है ना, हम थोड़ी बट मेरा क्या फॉर्मूला मैं यूज करता हूं ना, फॉर्मूला क्या है मेरा जो अब आपका भी फॉर्मूला हो जाएगा, दे दो ऊपर, जैसे ऊपर दिया यहां का ताला खुला, खुला तो तैयारी शुरू, शुरू हुई तो वो दिन आ गया पार्टी का, बहुत अच्छे ढंग से हमने पूरी तैयारी कर चुके थे। तो मेरे नीचे 20 वेटर रखे, 20 वेटर, तो मैंने उन 20 वेटर्स को समझाया अच्छे ढंग से, रोज समझाता था, फाइनल दिन भी समझाया कि देखो ये पार्टी जब पूरी हो जाएगी ना तो मैं आपकी पार्टी करूंगा, है ना, आपको आपका बहुत अच्छा ध्यान रखूंगा, पर पार्टी से पहले आप पार्टी मत करना, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने ठीक है, तो उनका मैंने बहुत वेलफेयर भी देखा था तो खुश थे मेरे से। खैर बहुत अच्छी पार्टी हुई, सब शांति से निपट गया। जब पूरे हो गए, गेस्ट चले गए, तो डीजी साहब है ना भ्रमण कर रहे थे तो वो मेरे पास भी आए, कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है ना, और आपसे मिलेंगे हम। मैंने सर थैंक यू वेरी मच। तो फिर अगले दिन कर्नल साहब ने मुझे बुलाया, बोला भाई हिसाब बनाया आपने खर्चे का? मैं हाँ सर बना लिया। कहते दिखाओ, मैंने दिखाया तो मुझे देख के हंसने लगे। तो फिर मुझे थोड़ा शक हो गया, मैंने सर आई एम सॉरी अगर कुछ इसमें गलती हो चुकी है। कहते नहीं, हमने जो सोचा था वो हमने पा लिया। तो मैं क्या पा लिया? कहते हैं देखो पिछले साल यही पार्टी इसी स्थान पे इसी ढंग से हुई थी और जो आपने खर्चा दिखाया इससे डबल खर्चा हुआ था सिगरेट और शराब में। मैं सर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कहते नहीं पॉसिबल था वो। मैं सर कैसे पॉसिबल था? कहते जिसको सौंपा था वो शराब भी पीता था और सिगरेट भी पीता था। तो उसको जब पीता था तो उसके नीचे 20 लोग भी, तो वो सब किस में हिसाब में आया? इस हिसाब में आ गया। और आपने तो कमाल ही कर दिया। फिर बोला कि अच्छा सुनो तुम मेडिटेशन करते हो? मैंने हाँ सर। कहते हैं डीजी साहब को पता चल गया कि आप मेडिटेशन करते हो तो उन्होंने ये बोला कि आपको जो हमारे ट्रेनिंग के डीजी साहब हैं उनसे मिलकर एक प्रोग्राम करना है ब्रह्मा कुमारीज का है ना, डी एडिक्शन का और मेडिटेशन का, आसाम राइफल्स फोर्स के लिए, पूरी फोर्स के लिए। मैंने बोला सर ठीक है मैं मिल लेता हूं। तो मैं गया डीडीजी साहब से मिलने। कहते हैं सती आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें पूरी आसाम राइफल की सेवा होगी मेडिटेशन और डी एडिक्शन की। मैंने बोला सर इतनी बड़ी फोर्स इतने स्थानों में फैली हुई है, 7 राज्यों में है, आप समझते हो सर कितना बड़ा प्रोग्राम होगा? 15-20 दिन का होगा वो, और आपको सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, गेस्ट रूम, सीएसटी गाड़ी, कहता है सब मिलेगा, आप प्रोग्राम बनाओ, बनाओ आप प्रोग्राम। तो मैंने 3-4 दिन लगाए प्रोग्राम बनाया, उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि ठीक है ये मंजूर होगा, मैं डीजी को दिखा रहा हूं और ये मंजूर होगा, पहला कार्यक्रम आपका शिलोंग में होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने करीब 20 दिन का एक सुंदर कार्यक्रम बनाया जिसमें हमारे अशोक गाबा आए और हमारी अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग स्थानों से आई और पूरे आसाम राइफल्स के जितने राज्य हैं, जितने सेक्टर्स हैं, मेन मेन जगह पे उन्होंने प्रोग्राम किए और सुंदर वो कार्यक्रम रहा, सफल रहा। तो मैं सोचने लगा कि ये कैसे हुआ। तो फिर मेरे मन में शायद ये सवाल आया कि देखो तुमने जो उस दिन हाजी किया, तुमने जो उस दिन एक्सेप्ट किया, उनको ये दिख गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ज्ञान जो इसका है ना, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये खोखला ज्ञान नहीं है इसके लाइफ में, ये जो कर रहा है मेडिटेशन ये प्रैक्टिकल है। ड्यूटी मीन्स ड्यूटी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं अंत में कि आप सब भी फौजी हो, आप सब यहां पे आए हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, तो आगे जीवन में आपको लगा कि सर हम इसको कैसे यूज करें, क्या इसका कोई बेनिफिट है, तो मैं आपको इशारा करना चाहता हूं कि आज जो समय इस दुनिया का चल रहा है और आगे जो समय आ रहा है जो आप पढ़ सकते हो, अभी हम सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आपको लग रहा होगा कि शायद परमात्मा शक्ति ही हमें अब सुरक्षित, सेफ, बैलेंस और खुश रख सकती है, क्योंकि हालात मनुष्य के हालात है ना, मनुष्य के से बाहर जा रहे हैं, है ना, जो मनुष्य की शक्ति है ना, तो इसलिए अगर हमारे साथ वो जुड़ा है तो शायद जीवन एक सुरक्षित भी रहेगा और बैलेंस भी रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, जय हिंद। जीव
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले।